رسول پاک کی دکھیا
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چلن کے ناظرین آج مدنی کلینک کے اندر ہم جو سلسلہ لے کر آئے ہیں وہ گزشتہ سلسلے کا ہی تسلسل ہے. جس طرح گزشتہ سلسلے کے اندر ہم نے روزے کے انسانی صحت کے اوپر فوائد جو حاصل کیے جا سکتے ہیں اس پہ ہم نے بات کی تھی, اسی کو آج مزید آگے لے کے چلیں گے. جس طرح روزہ ہماری روحانی چیزوں کو صاف شفاف بناتا ہے, اسی طرح اس سے ہمارے جسمانی فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. گزشتہ دوروں میں صرف ایک یہ چیز سامنے آتی تھی کہ روزہ جو ہے معدے کو فائدہ پہنچاتا ہے, لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی گئی ویسے ویسے یہ راز افشا ہونے لگے کہ روزے سے ہمارے تمام کے تمام سسٹم جو مختلف قسم کے اعضاء ہیں, یعنی کہ خون, جلد, جگر, لبلبا, بون میرو, شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, یعنی کہ کون سی ایسی چیز ہے ہمارے جسم کے اندر جس کو روزے کو صحیح معنوں میں رکھ کر اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی سلسلے میں آج ہم نے بات کرنی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ روزے کے حوالے سے بہت ساری تحقیقیں اس وقت دنیا میں بے شمار تحقیقیں ہوئی ہیں, اور تمام کی تمام تحقیق کے اندر جو ایک متفقہ بات نظر آتی ہے وہ اس چیز میں متفق ہے کہ روزے سے انسانی صحت کے اوپر بے شمار فائدے ہوتے ہیں. لیکن
ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی آج کل ایک عام بیماری ہے جیسے شوگر کی بیماری ہے, یہ دوسرا بلڈ پریشر کی بیماری ہے, تیسرا جوڑوں کا درد ہے, یہ بہت زیادہ کامن ہے. کیا ان بیماریوں کا روزے رکھنے سے فائدہ ہو سکتا ہے ان بیماریوں کے اوپر؟
دیکھیں, روزہ رکھنے سے تقریباً تمام بیماریوں میں ہی فائدہ ہوتا ہے
انشاءاللہ. صحیح,
کیونکہ اگر شوگر کے مریض کو ہم آپ لے لیتے ہیں تو آپ کا دیکھیں کہ اگر شوگر بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے, چل رہا ہے, کنٹرول میں نہیں ہے, تو آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ آلریڈی ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ مددگار جو آپ کے ثابت ہوں گے وہ آپ کے معالج ڈاکٹر جو بھی ہوں گے, وہ آپ کی اس میں بہت زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کریں گے. تو اس میں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اس میں شوگر لیول کو آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
اجے ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے بھی ریسرچ لکھی ہوئی ہے میرے پاس بریٹن میں موجود ہے کہ شوگر کی بھی جیسے دو اقسام ہوتی ہیں, ایک ٹائپ 1 اور ایک ٹائپ 2. جو ٹائپ 2 جو ڈائبٹک ہوتی ہے, یعنی دوسری قسم کی ذیابتی, اس کی کاز یہ ہوتی ہے کہ انسولین یا تو بن نہیں رہی ہوتی صحیح, یا بن رہی ہوتی تو نکل نہیں پا رہی ہوتی. ابھی ریسرچ بیس ریزلٹ میرے پاس موجود ہے کہ جب روزے کی حالت کے اندر ہم ہوتے ہیں تو میٹابولزم, جتنا بھی فوڈ ہوتا ہے جسم کے اندر وہ میٹابولائز ہو جاتا ہے, گلوکوز باڈی کنزیوم کر چکی ہوتی ہے. تو آپ کیا ہوتا ہے کہ انسولین کا لیول جو ہے نا, جو ڈائگنوسڈ ہو چکے پیشنٹ ڈائبٹیز کے, اس میں انسولین کا لیول ریز ہونا شروع کر جاتا ہے, جو کہ یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. جن کے انسولین نکلنا شروع ہو گیا, اس کا مطلب جو ڈائبٹک ہوئے ہوئے آلریڈی پیشنٹ ہیں اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں, تو ان کا ریورسل ہونے یعنی ڈائبٹک سے ٹھیک ہونے کا بھی अंदेशा मौजूद है कि ठीक हो सकते हैं।
बिल्कुल, चांसेस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखें, कोई भी रोगे से मुताल्लिक कोई भी चीज है, उसमें इंसानी सेहत के बेशुमार फायदे होते हैं।
कैसे हैं सलमान भाई? अभी
अल्लाह अल्लाह अल्लाह
जी, कंटिन्यू करें।
रोजे के हवाले से हम बातचीत कर रहे थे कि लास्ट सिलसिले में भी हमने रोजे के जो हमारे जिस्मानी फवायद होते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, उसी का आज तसलसल लेके हम चल रहे हैं। तो इस पे आज डिस्कस कर रहे थे शुगर के हवाले से कि शुगर के मरीज जो है
लोगों, इसमें ऐसा मुमकिन हो सकता है ना कि जो वो पेशेंट जो जिनका वजन ज्यादा है या रिस्क के ऊपर है डायबिटिक होने के और ब्लड प्रेशर होने के और हार्ट पेशेंट होने के, अगर ये मुसलसल 30 दिन रोजे रख लेते हैं तो इसमें इनको फायदा हो सकता है तीनों बीमारियों में?
डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन सवाल देखें बात वही आती है कि अगर आप रोजा रख रहे हैं और उसको असली रूह के साथ रखें
कहीं,
तब तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फी जमाना जो ट्रेंड चल रहा है अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना तो आप इसको कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। रोजा रखने से आपका जब बॉडी वेट कम होना शुरू होता है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से रोजा रखें जो उसके सही तरीकेकार है और रोजा का भी उसी हिसाब से तैयार करें, तो आपका बॉडी वेट कम होता है। जब जिस्म का वजन आपका कम होना शुरू हो जाता है तो आपके जोड़ों पे जो लोड बढ़ रहा होता है वो कम हो जाता है।
जी
ठीक है, जब वो लोड आपका कम हो जाता है तो आपका जो दर्द है ना वो काफी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। तो मतलब अल्टीमेटली जब आपने वजन कम कर लिया तो जोड़ों की तकलीफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी आपकी। लेकिन होता क्या है कि आपने सहरी में भी खूब खाना है और इफ्तार में भी जो अनवाइज काम की किस्म की चीजें होती हैं, खासकर फ्राइड चीजें जितनी भी होती हैं, वो उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो उससे बजाय इसके कि वजन कम होने का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लोगों को वो फवायद हासिल नहीं हो पाते इसके। अगर आप उसको मुतवाजन गिजा के हिसाब से इस्तेमाल करें कि आपने इफ्तार जो है बहुत लाइट लेना है, हल्का लेना है, पानी से खजूर से इससे आपने इफ्तार करना है, उसके बाद नमाज पढ़ के खाना वाना खा के फिर ईशा की नमाज और तैयारी करनी है तरावी के लिए, अगर आप ये अपना पैटर्न रखेंगे खाने पीने का तो आपको बेशुमार फायदे इसमें हासिल होंगे।
डॉक्टर, इसमें एक चीज ये थी कि रोजे की जो तीन मेजर बीमारियां जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां, अब पेशेंट जो रोजा रख लेता है, बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है काम करने का, तो सबसे पहले बॉडी जो जिस्म के अंदर जमा चर्बी होती है उस पहले तो ग्लूकोज यूज होता है, ग्लूकोज के बाद बॉडी वो चर्बी जो जमा हुई होती है वो
इस्तेमाल कर
ब्रेक करने शुरू कर देती है। सबसे ज्यादा चर्बी जमा होती है जिगर के अंदर, जिसके उसके बाद ये शरियानों वगैरह में जमा होना शुरू कर देती है। तो अगर हम ये चर्बी वाला फैक्टर ही कंसिडर कर लें तो चर्बी जिस्म में रोजे की हालत में ब्रेक डाउन हो रही होती है और मेटाबोलिज्म इतना हाई हुआ होता है कि चर्बी टूट के बॉडी उससे एनर्जी ले रहा होता है, तो जितनी प्रोलॉन्ग फास्टिंग होगी जितना अच्छा होगा उसके अंदर हमारी ये तीन मेजर बीमारियां जो है रोजा रमजान के अंदर सब कंट्रोल हो सकती है।
इसमें आप जो सिलसिला करते हैं और हम भी पिछले सालों से एक बात करते आ रहे हैं, यकीनन एक फ्राई और डिप जो इस तरह की चीजें हैं, चीज टाइप की जो चीजें हैं, फास्ट फूड टाइप की जो चीजें हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ और ऐसी गिजाएं हैं जिन मतलब एक शख्स ने ये जो हमने कहा इससे छोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी गिजाएं हैं कि जिनका इस्तेमाल या ओवर इस्तेमाल ये हमें नुकसान दे सकता है?
इसमें गिजाएं जो
घर में ही नवादरन के साथ एक नॉर्मल सालन पकाए, हमारे जैसे कि बकरे का गोश्त है, मछली का बाजों का सालन बनता है हमारे यहाँ, तो अब सालन बना है या सब्जी बनी है, अब उसके अंदर मेरी आंखों ने देखा, आपने आपका भी तजर्बा होगा कि तेल ठीक ठाक होता है, यू समझिए कि अगर वो जो सालन का जो बर्तन है पतीली जो है अगर हम उसको ढलाएं तो एक ठीक ठाक एक प्लेट जो है ना तेल की निकल आएगी, वो सब एक्स्ट्रा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो तेल का जो इस्तेमाल है कत्ता नजर इससे कि हम ना डीप फ्राई ले रहे हैं ना हम इस तरह की और कोई गिजाएं ले रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कुकिंग ऑयल का इतना जो बेजा इस्तेमाल जो हमारे यहाँ दीगर अशिया में हो रहा होता है तो क्या उसके भी कोई दिल पर या दीगर चीजों पर जैसा आप चिरवी का कह रहे हैं क्या कोई ऐसे इफेक्ट है?
बिल्कुल, इसमें आम रूटीन से भी अगर हम बात करते हैं जो हम रोजाना के खुराक इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके अंदर हम तेल या घी या कोई भी आयली शे जो है इस किस्म की इस्तेमाल करते हैं जो जरूरत से ज्यादा होती है, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए नुकसानदेह तो है अनटिल अनलेस जब तक हम उसको लिमिटेड यूटिलाइज ना कर लें। अगर फर्ज करेंगे आपने वो डाइट ले भी ली, खाना खा भी लिया और उसके मुताबिक आपने जिस्मानी वर्क कर लिया, तब तो वो आपकी चीज यूटिलाइज हो सकती है। लेकिन अगर आपने खाना खाया बहुत हाई नॉर्मल खाना खाया लेकिन ये है कि ऑयली बहुत ज्यादा था और आप लेट गए आराम करने सो गए, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो वो आपके लिए नुकसान देता
है। जैसे वुमन हम लोग दावतों में जाते हैं ना, तो दावतों में जिस चलें बात चूंकि माह रमजान मुबारक की चल रही है तो मैं उसी को बुनियाद बनाता हूँ। ठीक है, अब हम अमूमन क्या करते हैं कि इफ्तार, अब जहां भी इफ्तार पार्टी होगी, शहरी पार्टियां तो अमूमन होती नहीं है इतनी, तो जहां भी इफ्तार का सिलसिला होगा तो अगर जिसने भी इफ्तार की दावत रखी होगी डेफिनेटली वो एक इंतजाम करेगा, जैसे अमूमन दावत शादी ब्याह के मौके पर इंतजाम होता है और एक एक्स्ट्रा चीज होंगी। तो अमूमन दावतों में जो खाना बाहर से भी पककर आता है मैं बिल्कुल डीप फ्राई से हटकर, वो जिससे इससे बचना ही बचना है, जिसका ये कई अरसे से ये अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज करते रहे हैं और अमीर सुन्नत भी फरमाते रहते हैं। तो अब मसला ये है कि और भी दीगर जो घर में जो चीजें पकती हैं इस दावतों में, तो आप जिस दावत में जाएंगे तो जो कोरमा होता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कोरमा, तो कोरमे के अंदर मसाला भी ठीक ठाक और कोरमे के अंदर तेल भी ठीक ठाक। अच्छा, अब उसका मियार ये है कि अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए प्लेट में रखे और मौसम ठंडा हो वो पूरे के पूरे जम जाता है, हमें प्लेट धोकर हमें पी भी ना सके ऐसा हो जाता है। तो ऐसो में जिसको एहतियात का जहन बन जाए ना, वो फिर दावत हो या घर हो हर जगह पर फिर वो अपने आप को बचाता है। अब इस पर अमीर सुन्नत एक मदनी फूल में अर्ज करता हूँ, अमीर सुन्नत फरमाते किसको ये कहो तेल कम कर दीजिएगा, तो उसको यही नहीं पता था कि तेल कम कर देना कहते किसको है। तो बारोकत अमीर सुन्नत ये फरमाते कि जितना तेल आप इस्तेमाल करें उसका आधा कर दीजिए, 50% खत्म कर दीजिए, 75% खत्म कर दीजिए, उसका क्वार्टर तेल इस्तेमाल कीजिए, 25% तेल इस्तेमाल कीजिए। तो एक मियार और पैमाना दे दिया जाए कि ये ऑयल कुकिंग ऑयल वो भी अगर मियारी मिल जाए तो ठीक है। तो ये चंद चीजें जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाबी के लिए हो सकता है कि फायदेमंद साबित हो और हम इससे सेहत तंदुरुस्ती सलामती और आफियत के साथ जौक और शौक के साथ हम माह रमजान को पाने और इबादत करने में कामयाब हो जाए।
अच्छा डॉक्टर साहब, इन दिनों जो रोजे के जो दौरानिया कमोबेश 15 से 17 घंटे होगा, अब इस 15 से 17 घंटे के बाद हम जब इफ्तार कर रहे होते हैं तो इसमें फौरन से चीजें खाना, एकदम से ठंडा पानी पीना, जूसेस का पी जाना और जल्दी जल्दी चीजों को खाना, ऐसे खाने से कोई नुकसान हो सकते हैं?
यकीनन उसमें मैदा हमारा बड़ा रेस्टिंग पोजीशन में होता है,
17 घंटे की
फास्टिंग के साथ वो सुकून की पोजीशन में होता है। अब ऐसी सूरत के अंदर आप अगर कोई स्पाइसी चीज खाते हैं, मिर्चों वाली चीज खाते हैं या बहुत ज्यादा ऑयली चीज खाते हैं तो वो मैदे पे जाके डायरेक्टली इफेक्ट करती है, और उसके साथ साथ जो है फिर अगर आप ठंडा पानी वगैरह या जूसेस वगैरह ऐसी कोई चीज ले लेते हैं तो वो मजीद उसको बिगाड़ती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने तस्करा किया था कि जब कोई चीज मैदे में जाती है तो मैदा इटसेल्फ उसको हजम नहीं करता, मैदा उसको स्टोर करता है।
डॉक्टर साहब ये देखा रमजानों के अंदर बिलखसूस जो पेप्टिक अल्सर जो तेजाबियत के जो पेशेंट होते हैं
बढ़ जाते,
इसमें केसेस बढ़ जाते हैं, गैस की मसाले शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है और दूसरे ये अल्सर के पेशेंट की तादाद
बढ़ जाती है।
क्या इसकी वजह यही है?
इसकी एक बड़ी वजह यही हो सकती है, फिर दूसरा ये है कि एक दूसरी वजह भी ये आती है कि रमजान में जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो शेड्यूल थोड़ा चेंज होता है।
सही,
ठीक है, रात का खाने का शेड्यूल चेंज हो जाता है, सुबह का नाश्ते का आपका शेड्यूल चेंज हो जाता है, यानी कि आप सहरी में नाश्ता कर रहे होते हैं, इसी तरह सोने का शेड्यूल भी आपका तब्दील हो जाता है कि आप रात को लेट नाइट से सो रहे होते हैं, 1 बजे सो रहे होते हैं, सहरी में उठ रहे होते हैं, फिर सहरी के बाद, तो ये एक तरह से बॉडी पे स्ट्रेस भी आ रहा होता है। जब ये स्ट्रेस आ रहा होता है तो उसकी वजह से भी ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट होने आती है, इसको हम यूजुअली कहते हैं स्ट्रेस अल्सर वगैरह जो होता है।
कुछ कॉल्स हैं तो वो ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह, कॉल सुना दीजिए।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فیض الرحمن اتاری مدنی کلینک کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ روزے کی پیریڈ میں ہم خالی پیٹ میں رہتے تو کون سا غذا استعمال کریں کہ جس سے ہمیں انرجی ہمارے جسم میں باقی رہے اور ہم روزہ بآسانی رہ سکے, کوئی کمزوری محسوس نہ ہو, کوئی ایسا غذا بتا دے تاکہ اس کو استعمال کیا جائے اور روزے کی حالت میں ہم اپنے دیگر معمولات وغیرہ بھی بآسانی کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کچھ تو ارشاد فرمائیں گے. بآسانی کا لطف مائنس کر دیں, کیونکہ روزہ پتہ چلنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے. تو ویسے بھی مطلب کہ یہ پاکستان, ہند, بنگلہ دیش اور اس کے اور دیگر عرب ممالک کی طرف سے جائیں تو گرمی کے یہ مہینے ہوتے ہیں, تو ظاہر جو کام کاج کریں گے پیاس لگے گی. تو یہ جو فوائد بیان کر رہے ہیں نا, یہ بھی اسی میں یہ ہے کہ بھوک بھی لگ رہی ہوگی تو چھر بھی پگھل رہی ہوگی, اندر پانی جا رہا ہے نہ غذا جا رہی ہے, تو جو اندر میں جو جمع کیا ہوا جو سال بھر کا جو اسٹاک ہے نا وہ بھی ریلیز ہو رہا ہوتا ہے کہ چلو یار یہ ایک مہینہ میرے کو تو اگر ریلیکسیشن دے رہے ہیں, جو ریلیکسیشن دے رہے ہیں, ورنہ 15-17 گھنٹے کی فاسٹنگ تو ہے لیکن وہ جو باقی کتنے گھنٹے رہ گئے,
8 گھنٹے,
یعنی 8 گھنٹے میں ہم اتنا کھاتے ہیں جتنا عام دنوں میں 24 گھنٹے میں نہیں کھاتے. یہ ہے
بالکل,
یہ اتنا یاد رکھے, 8 گھنٹے میں ماہ رمضان مبارک میں اتنا کھاتے ہیں جتنا ماہ رمضان کے علاوہ ہم 24 گھنٹے میں اتنا نہیں کھاتے جتنا وہ 8 گھنٹے میں کھاتے ہیں. اب میدا اول تو وہ 14 گھنٹے بھوکا رہنے کا عادی نہیں ہے, 14-15 گھنٹے نہ وہ 14-15-17 گھنٹے بھوکا رہنے کا عادی ہے ہمارا میدا, کیونکہ سال بھر کے نفلی روزوں کی جو بہاریں ہیں اس سے ایک تعداد بےچاری محروم رہ جاتی ہے. یہ میں ایسے زندہ نرس کر رہا ہوں, اگر ہم نفلی روزوں کی بھی عادت رکھے نا تو ماہ رمضان مبارک کے روزوں میں بڑی مطلب کہ جس کو آپ آسانی کہتے ہیں, میں آسانی کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن آپ کو قدرے بہتری محسوس ہوگی. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رجب المرجب کے روزے رکھنا, شعبان المعظم کے اتنے سارے روزے رکھنا یہ ثابت ہے. اس کے علاوہ اور محرم الحرام کے نفلی روزے, تو ذوالحجت حرام کے نفلی روزے, تو یوں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دین اور اسلام کی یہ خصوصیت کہ سال بھر میں نفلی روزے اور اس کی برکتیں اور اس کی فضائل بھی بیان ہوتے رہے ہیں. الحمدللہ جو ان نفلی روزوں کا عادی ہوتا ہے یا نفلی تو رکھتے رہتے ہیں وہ ماہ رمضان کو بڑے خوبصورت طریقے سے گزارنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں تو ہم پورے سال چکے روزے نہیں رکھ پاتے, جو نہیں رکھ پاتے ماہ رمضان مبارک میں آتے ہیں, تو اب 14-15 گھنٹے نہ میدا بھوکا رہنے کا عادی تھا, بھوکا پیاسا, نہ 8 گھنٹے میں اتنا کھانے کا عادی تھا. دونوں صورتوں میں ہم نے میدے کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو زیادہ ہلکا ہاتھ رکھنا ہے, ہلکا ہاتھ رکھے, نارمل رہیے اور تھوڑی وہ دقت پریشانی آزمائش احساس بھوک کا پیاس کا کچھ تھکن کا ہوتا ہے تو ہونے دیجیے. الحمدللہ اس میں بڑی گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کا قرب اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا. مزید آپ کیا لے لیں جس سے ہمارا روزہ بقول ان کے بات آنے,
اس میں بہت آسان جو نارمل غذائیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں پکتی ہیں, اگر صرف اسی کا استعمال کریں تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز
تو سب سے زیادہ میں تو پکوڑے بھی عام بنتے ہیں.
نہیں وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نارمل نہیں ہے نا, یہ تو نارمل دنوں میں نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو نارمل چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ تہری میں کھجور کے ساتھ لے لیں آپ اور کھجور کا شیک بنا کے پی لیں, اس سے بہت فائدہ ہوگا. افطاری آپ کھجور کے ساتھ کریں گے تو کھجور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً ہائپوگلائسیمیا فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے,
شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے,
شوگر فوری طور پہ, مطلب آپ کو اتنا بہترین ریزلٹ اس کا ملتا ہے کہ ایک کھجور آپ نے کھائی آپ کو ٹھیک ٹھاک قسم کا انرجی مل جاتی ہے اس کے اندر. وہ لے لیں پانی کا استعمال افطار سے سحری کے درمیان ایک اچھے انداز میں پانی کا استعمال کر لیں, سحری کے اندر پانی کا استعمال کم رکھیں. عموماً دیکھا یہ گیا افطار اور سحری کے درمیان تو پانی کم پیا جاتا ہے لیکن سحری میں بہت پانی پی لیا جاتا ہے, جو بھی پرابلم ہوتی ہے اس میں پھر آگے جا کے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں.
یہ نفسیاتی اثر ہے کیا کرے, 5 منٹ جب روزہ بند کرنے میں رہ جاتی ہے تو اس وقت مطلب بیٹھے بیٹھے پیاس لگتی ہے, یعنی اگر وہ 2-5 منٹ جو آخری ہے نا اگر اس میں پانی پینے کا رہ جائے نا, ایسا لگتا ہے کچھ بہت بڑا رہ گیا, بہت میرا نکلے گا
کیسے,
صحیح رہ گئی ہے گیم رہ گیا, بہت بڑی کمزوری رہ گیا, میرا روزہ نکلے گا کیسے.
صحیح صحیح, یہ انسانی نفسیات ہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
तो इसमें ये है कि थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल करें, नॉर्मल जो शोरबे वाला सालन होता है उसके साथ खाना खाया जा सकता है, और जो का आटे की रोटी उसके साथ खाना खाया जा सकता है।
इस्तेमाल किया जा
सकता है, बेहतरीन चीज है फ्रूट का इस्तेमाल, तो खैर बहुत ही बेहतरीन है। सब्जियां हैं, दालें हैं,
जो लोग
इस्तेमाल कर,
जो लोग ये इफ्तार और तरावी का खाना वगैरह सब मिलाकर अब रात में जो एक और दो तीन सेट लगाते हैं, क्या इनको ये मशवरा देंगे अगर इसको खाने का दिल कर रहा है और आप जागे रहे तो फल फ्रूट पर गुजारा कर लें?
बिल्कुल,
ये जो भारी भरकम गिजाएं होती हैं इनकी तरफ मुतवज्जे ना हो,
बिल्कुल
ये कहा जा सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ इसमें। एक ये एक जो मेन कम्प्लेन आती है रमजान के अंदर कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत जो हो जाती है ना, वो फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करने से वो शिकायत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, उसका बहुत फायदा होगा। एक तो पानी की मिकदार आपको बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर मिल जाएगी फ्रूट की शक्ल में, एनर्जी आपको मिल जाएगी, दूसरी आपको फाइबर्स बहुत सारी बॉडी के अंदर मिल जाएंगे जिसकी वजह से जो है ना आपको कब्ज की शिकायत।
रमजानों के अंदर इफ्तार के बाद दो तरह के पेशेंट की तादाद एक तो बढ़ जाती है, पेट के मसाइल होते हैं, दूसरा गले खराब की भी बड़ी शिकायत हो रही होती है, इसकी क्या वजह?
देखिए पेट के मसाइल पे तो हमने अभी बात करी है कि उसकी वजह ये, गले का मसला वही आता है सारा का सारा, कि जब आप एकदम ठंडा पानी पीते हैं और एकदम यक पानी पीते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम करता है, वो लाजमी बात है आपका जो है गले की दीवार पे जो है वो असर कर रहा होता है और वहाँ पे जो है ना इन्फ्लेमेशन सोजिश वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से गले के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फिर जुकाम जो है ना फर्स्ट स्टेज जो होता है जुकाम स्टार्ट हो जाता है, जुकाम स्टार्ट हो जाता है तो वो पोस्ट नेजल ड्रिबलिंग अंदर की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, जब वो अंदर गिरना शुरू हो जाती है तो वो सोजिश पैदा कर देती है अंदर जाके गले के अंदर, उसके नतीजे में क्या होता है कि खांसी स्टार्ट हो जाती है, जब वो खांसी स्टार्ट हो जाती है तो आप फिर उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं, फिर आप उसको नेग्लेक्ट, क्योंकि इतनी जल्दी आदत नहीं है हमारे पास, हम लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ना, तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, जब वो खांसी हद से ज्यादा गुजर जाती है तो सीने पर से
करना, डॉक्टर को सस्ता फ्री करते हैं तो फिर देखिए आप हम जीना मुश्किल ना करते तो कहिएगा। अच्छा ये अर्ज करता चलो, नेकी की दावत आपको देना चाह रहा था, जिस तरह रोजे की बातें हो रही हैं, सेहत की बातें हो रही हैं, इसकी बरकतों की भी माशाल्लाह बातें हो रही हैं, मगर साथ एक दिल खराश बात ये भी है कि रोजा ना रखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, दुनिया भर की बात अगर मैं कहूं तो भी गलत नहीं है। देखिए रोजा ये बड़ी बरकतों वाला अजमतों वाला, इसके दुनिया के भी फायदे हैं, इसके आखरत के भी फायदे हैं, जिन पर रोजा फर्ज है उन्हें चाहिए कि बिला इजाजत शरई रोजा कजा ना करें, रोजा ना छोड़ें, गुनाहगार भी होंगे और बहुत सारे फवाइद से महरूमी भी है, नुकसान ही नुकसान है। अब वो इस्लामी भाई जो सुन रहे हैं, जो रोजा जानते हैं कि लोग रोजा नहीं रखते, मेहरबानी करें आप खूब दावत दें और रोजा रखने की तरगीब दिलाएं, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और मुअल्लिमीन सबसे मदनी इंतजा है, मेहरबानी करें। फैजान रमजान का दर्स बहुत ज्यादा आम करें, चौकों पर भी फैजान रमजान का दर्स दें ताकि इस्लामी भाइयों में रोजा रखने की ख्वाहिश पैदा हो और इन्हें रोजे की अहमियत का पता चले, इसकी फर्जियत का मजीद एहसास दिल में पैदा हो। और जो रोजा नहीं रखते अगर वो सुन रहे हैं तो मेहरबानी करें, नियत करें कि इस साल हम माह रमजान के पूरे रोजे रखेंगे। अल्लाह करीम हम सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब, कॉल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
इमरान भाई आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और दूसरी बात यह है कि सर यहाँ हमारा यूके में, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ, उसके शहर लंदन से, मेरा नाम मोहम्मद यासिर अनवर अतारी है। तो सर मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना दिन बड़ा हो जाता है, रात जो होती है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, तो हमारा टाइम जो होता है ना तकरीबन 19 घंटे का यानी कि तकरीबन बनता है इतना रोजा, तो उसमें यह है कि सर हमें यानी कि जो हमारी सहरी होती है वो 12-1 बजे से पहले पहले होती है, तो एक मरतबा खाने का वो होता है, तो इसमें तो हमारी सहरी सर वो जो हम 11 या 12 बजे खाएंगे तो वो हमारी सहरी में ही अकाउंट होगी, इसके बारे में मैंने पता करना है, और वो कौन सी गजा ऐसी खाएं जिससे हमें एनर्जी आ जाए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, सलामत।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے اندازہ ہے آپ کے یو کے میں روزے بڑے طویل ہوتے ہیں سورج سے غروب ہونے کے حساب سے. اب یہ کہ غذاؤں کا تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ کون کون سی غذائیں نارمل سی جیسے گھر میں پکتی ہیں اس میں بھی تیل کی مقدار کم ہو اور دیگر اس طرح کے مسالے والی غذاؤں سے ڈیپ فرائی وغیرہ سے ہم کوشش کریں خود کو بچائیں. اور پانی ظاہر ہے اب آپ کے پاس پانی پینے کا ڈیوریشن بھی کم ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں کیا کریں؟ 19 گھنٹے 20 گھنٹے کا جہاں روزہ ہے ان کے پاس تو دن بھر کے بچے ہی 4 گھنٹے ہیں.
وہاں پہ اتنی ریکوائرمنٹ نہیں بن پاتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو ہماری ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. اگر وہاں پہ ٹیمپریچر یوزلی کتنا رہتا ہوگا؟
یہ وہاں پہ دیکھیں مختلف شہر ہوتے ہیں, ابھی جیسے کہ ہے نا تو وہاں کہیں 20 بھی ہوتا ہوگا, کہیں 19 ہوتا ہوگا, تو کہیں ہو سکتا ہے کہ 20, 22, 25, 26 بھی ہو جاتا ہو.
مطلب یہ
گرم موسم نہیں ہوتا, گرم موسم جس کو کہتے ہیں
وہ ایزیلی جو وہاں پہ اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں بنتی
ان کے لیے, تو مزید کبھی کبھی گرم ہو جاتا ہے اگر ہم جیسے لوگ جائیں نا.
ہمارے لیے
تو بالکل گرم موسم نہیں ہے,
تو ان کی ریکوائرمنٹ باڈی کی بنتی نہیں ہے. ایک نارمل اگر وہ میرے خیال میں 6-7 گلاس بھی, پھر ان کا ورکنگ انوائرمنٹ بھی طرح ڈفرینٹ ہوتا ہے, اندر کے ماحول بھی الگ ہوتا ہے کہ آپ کے وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایئر کنڈیشن وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے تو باڈی کی ریکوائرمنٹ
کہاں
اگر جہاں پہ انسان
یو کے وغیرہ یو کے میں اتنی ایسی کوئی نہیں, بلکہ کئی جگہ پہ آپ کو پنکھے بھی نہیں ملیں گے.
اچھا
بعض جگہ ایسی جہاں معتدل موسم ہے, یعنی کہ ایک ایسا موسم ہے کہ جہاں وہاں اے سی کی ضرورت پڑتی ہے نہ پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ ان کی وہ بجلی کے حساب کتاب میں وہ خوشحال رہتے ہیں.
تو میرے خیال میں پھر اگر یہ 6-8 گلاس اگر پانی پیے 6 گھنٹے
6-8 گلاس
6-8 گلاس پانی پیئیں گے تو میرے خیال میں مور دین انف آئے گا ان کے لیے. لیکن اس میں بھی کوشش یہی ہے کہ سحری میں زیادہ نہ ہو, کیونکہ سحری میں اگر زیادہ پانی پی لیں گے تو پھر وہی پرابلم ہوگی کیونکہ ان کا دن کافی لمبا ہے, پھر وہی جو ہے مکسچریشن کے پرابلمس ہوں گے, یورین کے پرابلمس ہوں گے, تو وہ پھر ڈی ہائیڈریشن ہوگی, پانی کی اخراج ہوگا, نمکیات کی کمی ہوگی, تو وہ پرابلم الگ ہوگی.
اللہ تعالیٰ کی شان ہے, پاکستان میں دیکھیں تو 15-16 گھنٹے کا روزہ, یو کے کی طرف جاتے ہیں یعنی یہ پاکستان ہے اور ٹھیک ہے یہ پاکستان, یہ سمجھے کہ یہ جیسے نقشہ ہو گیا, یہ بیچ ایک پاکستان آ گیا, اس طرف جاتے ہیں تو اوپر کی طرف تو یو کے انگلینڈ وغیرہ آپ کو ملے گا, اور یہ پاکستان ہے, یہاں نیچے کی طرف جائیں گے تو آپ کو ساؤتھ افریقہ ملے گا, ٹھیک ہے, نیچے کی طرف ساؤتھ افریقہ اور افریقی ممالک ملیں گے. یہاں جاتے ہیں تو روزہ تقریباً یہ بہت کم گھنٹے کا رہ گیا, یعنی یوں سمجھیے کہ ایک تو صبح صادق بھی لیٹ ہے اور مغرب جلدی ہے, اور اس وقت وہاں پر جیسے جیسے وقت گزار رہا ہے ٹھنڈی بڑھ رہی ہے, اور تھوڑا تھوڑا وہاں ہیٹر کا استعمال شروع ہو جائے گا, اور وہاں جاتے ہیں تو 20-21 گھنٹے کا روزہ, یہاں جاتے تو 15-17 گھنٹے کا روزہ. تو یہ ایک ہی پلینٹ ہے, زمین ایک ہی زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں, اسی زمین اسی پلینٹ پر جس طرح دنیا گول ہے, اسی زمین کے اوپر یو کے بھی آباد ہے, پاکستان بھی ہے اور افریقہ بھی ہے, اور پتہ نہیں آسٹریلیا فجی کا کیا ہوتا ہوگا جو بالکل اس کونے کے اوپر ہے, اور اوپر کی طرف ادھر مطلب رشیا کے ممالک ہیں, مگر اور سورج ایک ہے. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ کہیں پر روزہ کتنے گھنٹے کا, کہیں روزہ کتنے گھنٹے کا, کہیں سورج کب غروب ہوتا ہے, کہیں سورج کب غروب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, اس کی قدرت ہے, اس کی وحدانیت ہے, اور یہ نشانیاں ہیں ہم لوگوں کے لیے اگر ہم اس پر غور کریں کہ یہ کائنات کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت چلا رہی ہے, اس کائنات کو اس کی حکمت ہے کہ کس طرح یہ کائنات چل رہی ہوتی ہے, اور مسلمان کا ایمان مزید مضبوط اور تازہ ہوتا ہے, اور غیر مسلموں کو ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے یہ چیزیں کہ دیکھو خدا ہے اور وہ واحد و یکتا ہے, اس کو کوئی شریک نہیں ہے. کال لے رہے ہیں,
کال سنا رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمران عطاری سگے عطار عرض کر رہا, ماشاء اللہ سلسلہ کلینک بڑا ہی پیارا ہے, روزے کے تعلق سے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بڑی ہی پیاری رہنمائی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے تو کیا وہ کھجور کھائے گا تو کیا اس کو نقصان ہوگا؟ وہ میٹھا ہے اور میٹھے खाने का जो मना किया है उसके ताल्लुक से मैं पूछ रहा हूँ।
रोजे की हालत में डॉक्टर साहब जो डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं,
खजूर का इस्तेमाल करें। एक आध खजूर खाने में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो नुकसान दे सकती है। एक आध खजूर खाने के लिए इसलिए हम कह रहे हैं कि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया में तो वैसे ही पेशेंट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो ड्रग्स कौन सी यूज कर रहा है, वो दवा कौन सी यूज कर रहा है।
बहुत लॉन्ग हमारे यहाँ दो महीनों में बाहर दवा होता है, दवा में
मेडिसिन
हमारा ड्रग्स तो वैसे मनुष्य,
इसलिए मैं दवा पे आ गया कि दवा कौन सी इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर वो लॉन्ग एक्टिंग है, ज्यादा लंबे अरसे काम करने वाली दवा है, तो उसमें ये है कि अपने वालिद से जरूर मशवरा कर ले इस दवा वाले से कि ये दवा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस दौरान मैं खजूर का इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आम रूटीन में आम आदमी खजूर खा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं।
अगर डॉक्टर साहब ये जैसे कि अगर जो डायबिटिक के पेशेंट है, शुगर के मरीज है, जिनको मल्टीपल दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये रोजा रखने रमजान के आने से पहले तो अपने मालिक से चेकअप करा के दवाइयाँ वगैरह एडजस्ट करा के रोजा रख सकते हैं?
बिल्कुल रख सकते हैं। जो भी इनके मालिक हैं उनसे ये मालूमात कर लें और अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर लें। और इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि आप कोई इंसुलिन लेते हैं तो आप वो खुदा ना खासा रोजा नहीं रख सकते या आप कुछ नहीं रख सकते। मालिक से जरूर मशवरा करें, आपकी इंसुलिन भी एडजस्ट करके जो है रोजा रखा जा सकता है। इसमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप इस्तेमाल करके जो है रोजे की इफादियत को हासिल कर सकते हैं। रोजा बढ़ाते खुद आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसमें हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मेडिकल एसोसिएशन है उसकी बाकायदा रिसर्च भी मौजूद है और इस पर सेमिनार भी हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने बिलखसूस शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों पे खास तौर पे कहा है कि वो इसमें अपने मालिक से मशवरा करके रोजा रख सकते हैं दवाओं की एडजस्टमेंट करके। उसमें रोजा रखने में कोई मसला नहीं है अगर उनका शुगर और ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में आता है। तो इन चीजों का ख्याल रखें और मालिक से मशवरा करके रोजे के हवाले से।
सही जैसे रमजान शरीफ के अंदर गर्मी का मौसम भी बहुत ज्यादा होगा, अब रोजे की कैफियत भी होगी, तो इसमें जैसे शाम के वक्त बिलखसूस ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा होता है, सर भी चकरा हो रहा होता है, अब इसमें कैसे फर्क पैदा करें कि रोजे के सिम्टम्स हैं या फिर ये गर्मी के सिम्टम है?
देखिए गर्मी अल्टीमेटली हमारी बॉडी पे असर तो करेगी, ठीक है। और अगर अपने जिस्म को आपने जो आपके जिस्म की जरूरियात के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूँ पानी का इस्तेमाल, वो अगर आपने पूरा किया होगा तो आप के लिए बहुत ज्यादा आसानियां रहेंगी। लेकिन अगर आपने पानी की कमी रखी अपनी जरूरियात के मुताबिक, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी जरूरियात है, उसके काम की नोयत पर डिपेंड करता है उसका काम किस किस्म का है, तो अगर वो अपनी जिस्म की पानी की जरूरियात को पूरा कर लेता है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ उसमें ये होता है कि इफ्तार के अंदर इफ्तार के करीब जब पहुंच रहे होते हैं, असर का टाइम हो रहा होता है, तो उसमें यह है कि थोड़ा सा आदमी को चक्कर आने लगते हैं, थोड़ी सी नफात महसूस होने लगती है, थोड़ा सा जबान खुश्क होने लगती है, तो वो एक पीरियड जो गर्मी की वजह से होता है वो तो ऑलरेडी गुजर चुका होता है।
सही।
वो जो पीरियड होता है वो होता है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के दरमियान जो होता है, क्योंकि ये पीक टाइम होता है सूरज का, बिल्कुल आदमी के ऊपर आया हुआ होता है काफी ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा पीक टाइम होता है। अगर उस दौरान अगर खुदा न खास्ता उसको टेम्परेचर होता है, बुखार की कैफियत होती है या फिर बेहोशी वाली कैफियत खुदा न खास्ता आ जाती है, तो फिर हम उसको गर्मी की तरफ लेके जा सकते हैं। ये हो सकता है उसको हीट स्ट्रोक हुआ हो या सन स्ट्रोक हो गया हो, जिसकी ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो। लेकिन अगर यही कैफियत आपकी इफ्तार के दरमियान हो रही है, इफ्तार से कुछ
मगरिब
के दरमियान में अगर हो रही है, इफ्तार से पहले कुछ हो रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस ये होंगे कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि आपको शुगर लेवल भी कम हो रहा होता है, आपका कैल्शियम लेवल भी कम हो रहा होता है, सॉरी पोटेशियम लेवल भी कम हो रहा होता है, जब ये दोनों लेवल कम हो रहे हो तो उसमें नकाहत और इस किस्म की कैफियत पैदा होने लग जाएगी।
अब इसमें जो बड़ी एज के जो लोग होते हैं इनको क्या क्या एहतियातें करनी होंगी?
देखिए इसमें
ज्यादा बाहर ना निकला जाए,
बिल्कुल बिल्कुल
जो उसमें
बिल्कुल इसके अंदर जो एक तो आम रूटीन के अंदर में रोजे की हालत तो खैर अपनी जगह एक अलग चीज है, लेकिन आम रूटीन में भी जो है इस टाइमिंग के अंदर खासकर बुजुर्ग और बच्चे जो है ना उनको एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी निकलना हो तो साथ कोई ना कोई छाता वगैरह साथ लेने का, छाता अवेलेबल नहीं है तो सर को ढांक लें, नहा लें उसको, बड़ी आस्तीनों वाले कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, जो हम बार बार इस चीज के ऊपर तवज्जो दिलाते रहे, तो वो एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह हीट स्ट्रोक वगैरह से इसमें बचत होती रहेगी और रमजान के मामलों में भी आसानी पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह।
अब्दुल खलील भाई कुछ आप फरमाइए, आप क्या आज मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए लाए?
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد سب ہمارے پچھلے سلسلے میں شوگر کے مریضوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی, ابھی بھی جیسے کال آئی کہ شوگر کے مریضوں کو جو اس میں جو ہے نقاہت محسوس ہونے لگتی ہے روزے کے دوران, تو اس حوالے سے الحمدللہ رب العالمین ایک بہت ہی پیارا گھریلو علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں کہ اس میں یہ ہوگا کہ اگر شوگر کے جو جن کو یہ ان کے لاحق ہے تو اگر یہ انشاءاللہ عز و جل یہ گھریلو علاج کرتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ عز و جل یہ نقاہت, چکر, گلے کا خشک ہونا, تو انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ ہوگا. شوگر والے روزہ داروں کے لیے کمزوری کا گھریلو علاج, مربع آملہ, آملے کا مربع کہہ لیں یا مربع آملہ, یہ مربع ہے اور حسب ضرورت اس کو لے لیجئے, مثلا ایک پاؤ, آدھا کلو یا جتنا بھی آپ استعمال کرنا چاہیں. تو اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ مربع آملہ ایک پیس دھو کر,
یہ والا ایک پیس,
جی
دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے, اسکرین
میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو یہ اس کے بڑے فوائد ہیں. اگر ویسے بھی شوگر والے, اگر یہ خشک ایک آملہ آتا ہے اور ایک مربع آتا ہے, جو خشک آملہ ہوتا ہے اسے جو ہے اگر شوگر والے ویسے بھی عام طور سے پیس کر اس کی گٹھلیاں نکال کر اس کو پیس کر استعمال کرتے ہیں تو انہیں بھی الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ہے مربے کی صورت, اور مربے میں عموماً شیرہ ہوتا ہے
میٹھا, کیا کہہ رہے ہیں اس کو ایک پیس کو,
جی تو اس یہ ہوتا ہے میٹھا جیسے شیرہ ہوتا ہے. تو اس کا اس طریقہ استعمال یہ کہ مربع آملہ کا ایک پیس دھو کر سحری اور ایک عدد افطار میں کھا لیجیے,
یہ ایک
یہ
ایک پیس افطار میں لے لیں,
ایک سحری میں,
ایک سحری میں لے لیں, دھو کر کھا لیں,
دھو کر کھا لیں, اس کی مٹھاس جو ہے زائل ہو جائے گی, دھونے سے مٹھاس نکل جائے گی. اگر ہلکا پھلکا میٹھا ہوگا تو اتنا میٹھا تو چل ہی جاتا ہے انشاءاللہ. اور جنہیں شوگر کا مسئلہ نہیں ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ بغیر دھو کر استعمال کریں. تو اس کے جو انشاءاللہ جو فوائد ہوں گے کہ دوران روزہ ہو جانے والی کمزوری, نقاہت, چکر, گھبراہٹ, گلے کا خشک ہونے, گلے کے خشک ہونے اور ہائی بلڈ پریشر میں بے حد مفید ہے انشاءاللہ.
قدرتی جڑی بوٹی, جڑی بوٹی تو نہیں
ہے, کیا یہ پھل ایک جیسے سیب ہوتا ہے کسی درخت کا,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت نصیب ہوئی ہے,
الحمدللہ
نعمت نصیب ہوئی ہے,
جی بہت ہی پیارا. اس کے بارے میں شیخ طریقت امیر السنت نے لکھا بھی ہے گھریلو علاج کتاب میں کہ یہ شوگر والوں کے لیے مفید ہے مگر وہ دوسرے انداز سے کھانا ہوتا ہے, مگر اس انداز سے کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہت ہی آسان اور یعنی کہ کوئی اس میں اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہزار روپے کلو آئے گا, تقریباً 350 یا 400 روپے کلو مل جاتا ہے.
اچھا
تو آسانی سے اس کو
استعمال ہوگا, جتنا بھی آپ نے پیاری میں رکھا اندازن کتنا وزن ہوگا,
اندازن یہ ہوگا 300 گرام کے قریب ہوگا,
1 کلو تو بہت زیادہ ہو جائے گا,
1 کلو زیادہ. بغیر شیرے کا لے لیں, دونوں طرح سے یہ ملتا ہے دکانوں پر, انہیں شیرے تو استعمال کر رہے ہیں یہ شوگر والوں نے, تو اگر شیرے سے ہٹ کر اس کو لے لیا جائے خشک تو تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لیتے ہیں, 100 روپے پاؤ 80 روپے پاؤ.
یہ میں نے آپ اسلام کے لیے بھی خاص طور پر سوالات کیے ہیں تاکہ اگر مدنی چینل کے ناظرین کو اس معاملے میں مزید گھر بیٹھے تشویش ہو رہی ہو کہ یار یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تو جو ذہن میں سوالات آئے میں نے کر لیا. جی
ایک تو یہ ہے, اسی طرح سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ بعض لوگوں کے جو ہے بی پی لو ہو جاتا ہے روزے کے دوران اور سر درد بھی ہوتا ہے, گھبراہٹ, چکر وغیرہ, تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ گھریلو علاج بہت ہی یہ بھی یوں کہہ لیں آسان ہے کہ گھر میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. دوران روزہ بی پی لو اور درد سر گھبراہٹ کا گھریلو علاج, اس میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کشنیز, اسے کہتے ہیں کشنیز, یہ کیا چیز ہے, یہ دھنیا آپ نے دیکھا ہوگا, ایک سبز دھنیا ہوتا ہے اور ایک جو ہے اس کے بیج ہوتے ہیں,
تو یہ جو عموماً چائے کے بعد آدمی کھاتے ہیں,
جی جی
لیتے تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے,
جی جی وہی, اور یہ دھنیے کے جو بیج ہیں اس کا اندر کا جیسے مغز ہے, تو یہ دھنیے کے بیج کے جو ہے وہ اندر سے نکلنے والا اس کا مغز ہے, اسے کشنیز کہا جاتا ہے. تو اس کی جو مقدار ہم لیں گے 125 گرام. اور دوسری چیز جو چیز ہے یہ عموماً گھر میں جو ہے وہ گرم مسالوں میں استعمال کی جاتی ہے, इसका नाम है दारचीनी, ये एक दरख्त की जो है छाल है, तो ये इसकी भी मिकदार 125 ग्राम। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है ये भी अमूमन घरों में इस्तेमाल में आती है, सभी इसको जानते हैं कमोबेश, छोटी इलायची, इसकी जो मिकदार है इनसे कम होगी तकरीबन 50 ग्राम। तो ये तीन चीजें हो गई। इन तीन चीजों का जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि तीनों चीजों को अच्छी तरह धोकर पीस लीजिए। एक दफा दोबारा इनके नाम सुन लीजिए, कशनीस 125 ग्राम और दारचीनी 125 ग्राम और छोटी इलायची 50 ग्राम। तो ये तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को अच्छी तरह पीस लीजिए और सहरी और इफ्तारी में एक एक चाय वाला चम्मच इस्तेमाल कीजिए।
तीनों को मिला लें?
तीनों को मिला।
इसमें कोई मीठी चीज?
मीठी चीज नहीं
है। नहीं, अच्छा आप ये जो तीन चीजें थे ये समझे, जैसे हम लोग घर में आसान होता है, घर में लाइन है ना, मतलब हमको ये बोला जैसे एक पहले में आप देखो पत्ती, ठीक है, चाय की पत्ती, दूसरी पहले में देखा है आप चीटी, तीसरी में देखा है आप दूध, और आप कहें कि इस एक प्यारी दूध के अंदर ये एक चम्मच पत्ती और ये एक चम्मच चीनी डालकर आप इसको दो दफा तीन दफा उबालें और उसके बाद पी जाएं, और अगर चाहें तो भले इसमें दो या तीन इलायची डाल दें तो ये और टेस्टी हो जाएगी और वो हो जाएगा, तो ये मेरा ख्याल है ये बन जाए, क्योंकि हमारी अब चाय का वो फार्मूला बताए, तो ये वैसे मैंने आपको फार्मूला बताया भी है, अरे हम भी कुछ चाय बनाता हूँ, मुझे मेरे घर वालों को मेरे हाथ की बनी हुई चाय अच्छी लगती है, तो मतलब एक कप प्याला, मतलब एक कप दूध जिसने आपने चाय पीनी है, क्योंकि थोड़ा पकेगी तो थोड़ी चाय कम हो, दूध कम भी हो जाएगा, तो एक कप दूध में एक चम्मच पत्ती डाल दें और एक चम्मच आप चीनी डाल दें और उसको तीन मरतब आप जोश दें और उसके बाद पी लें, ये बेहतरीन दूध पत्ती तैयार है। आप मतलब बाहर शायद आपको दूध पत्ती मिलेगी ना,
तो हम चाहें तो इसमें ये भी ऐड फरमा दें कि जहाँ ठंडे इलाके होते हैं तो वो चाहें तो जाफरान के
सब डालेंगे, क्योंकि चाय घर में बनती है। अब आपके लिए जो मतलब होता है ना उसमें ये चीजें बनती है, तो आपके लिए तो कोई मसला ही कोई नहीं है ना, इलायची डालो, दालचीनी डालो, आलू चाय डालो, जो भी डालो, तो ये होता है। अलबत्ता है वाकई ये सुनते हैं ना जब आपकी ये बातें, मैं अपने जाती तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे मेडिसिन तो फैक्ट्रियों में और ये केमिकल और ये सारी चीजें बनती, वैसे मैं ये चीजें सुनता हूँ ना जो आपके जरिए मुझे खुद लुत्फ आता है, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और उसकी मोहब्बत से किबरियाई की मतलब मजीद जैसा हमारे अंदर ईमान ताजा हो जाता है ना, अल्लाह तआला ने कैसी कैसी नेमतें इस जमीन पर अपने बंदों के लिए अता फरमाई है, ये चीजें काम, ये को
मेडिसिन भी इन्हीं चीजों से बनती है,
मेडिसिन वाले बताते नहीं ना वो को बना लेगा, वो तो फैक्ट्री चलने नहीं होती है ना,
मेडिसिन भी इन्हीं से फॉर्मुलेटेड होती है।
अच्छा?
इन्हीं चीजों से
कभी बताया मेडिसिन में दालचीनी डाली है? दालचीनी डालते हैं,
दालचीनी के अंदर केमिकल होते हैं।
अच्छा, वो उनको निकाल दे
केमिकल
जूस ही निकाले, फल का भी जूस निकालते हो, कुदरती अजवा का भी जूस निकालते, चले ठीक है, लेकिन फर्क तो मरीज को, अच्छा मरीज को फर्क पड़ना चाहिए, अल्लाह बचाए, ये भी अल्लाह ताला ने लोगों को अक्ल और शऊर दिया है, मैं तो अल्लाह की कुदरत की बात करूँ, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को वो अक्ल और शऊर दिया जिन्होंने इन्हीं चीजों में से मजीद दवाया ईजाद की जो कि अल्लाह ताला के बंदों को फायदा पहुँचाती है।
इसमें एक चीज और है कि मेरे शेख तरीकत अमीरुल सुन्नत का बहुत ही प्यारा रिसाला गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल, इसमें आपने तरगीब इरशाद फरमाई है कि जैसे हमारे यहाँ अभी फिलहाल जैसे गर्मियाँ हैं, तो इसमें आपने फरमाया कि गर्मियों में ठंडे मसाले इस्तेमाल किए जाएं खाने पीने में, तो ये ठंडे मसालों में ये छोटी इलायची भी शामिल है, इसी तरह से दारचीनी भी जो है वो इसमें शामिल है, तो खुश धनिया ये भी शामिल है, तो ये तीनों चीजों का जिक्र जो है शेख तरीकत अमीरुल सुन्नत ने अपने इस रिसाले में भी फरमाया है, तो इन मानों में कि यूं कहने कि अगर हम इसे ये कहा जाए कि ये शेख तरीकत अमीरुल सुन्नत की भी तरगीब है कि अगर हम मसाले जो है दीगर जो तेज मसाले होते हैं जैसे गरम मसाले, काली मिर्च, हरी मिर्च, किसी भी लाल मिर्च वगैरह, वो कम करके ये वाले मसाले भी इस्तेमाल करें, और फिर जिनको बीपी वगैरह लो हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, इसके जो फवायद है वो बाकी है कि इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल रोजे के दौरान बीपी लो होने, घबराहट, बेचैनी, दर्द सर और शुगर से होने वाली कमजोरी का ये बेहतरीन घरेलू इलाज है, انشاءاللہ
اللہ آپ کو اور برکت دے.
آمین.
اور ہمیں روزے بڑے خوبصورت انداز میں پیار و محبت سے ادب اور احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا ہو. کال لینا,
کال سنو,
کال ہے,
کال سنا دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام غلام عطاف اختاری ہے, میں فاروق نگر لاڑکا نام سے بول رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل, 3 سال پہلے میں ڈپریشن کا مریض تھا اور حاجی صاحب کے سلسلے ڈاکٹر زیرک کے پروگرام میں میں نے حاجی صاحب کو کال کی تھی اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تھی. الحمدللہ عز و جل اس وقت میں مدنی انعامات کا کابینہ سطح کا ذمہ دار ہوں. الحمدللہ عز و جل حاجی صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے, انشاءاللہ عز و جل کبو بے 26 اسلامی بھائی 30 دن کے لیے ہم نے تیار کیے باب المدینہ کراچی کے لیے. دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ عز و جل امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو انشاءاللہ.
ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ وہ خوش رکھے, مزید سے حیدر تندرستی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. حوصلہ افزائی بھی کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں تو تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا, تیاری کیجیے, فیضان مدینہ جائیے, رمضان یہیں گزاریں گے انشاءاللہ, مزہ آ جائے گا. بلکہ مزے کا مزہ کیا آئے گا, مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ کال چلے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام شافلہ پاریا ہے, میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. نگرانِ شورا کی آمد مرحبا. مدنیت چینل کا یہ سلسلہ مدنیت کلینک سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے. بہت سی اسلامی بہنوں کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ سارا دن روزہ رکھنے سے حالت صحیح رہتی ہے, جب افطار ہوتی ہے اس کے بعد حالت خراب ہو جاتی ہے. ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا سمجھیں گے کال سے؟ ہماری بہت پیاری مدنی منی ہے, ایسا لگتا ہے جیسا کہ ہند کا ویزا لگا تو کاشی پور جانا ہی پڑے گا.
نہیں, یہ سوال بھی بہت اچھا ہے ان کا, اور بہت کامن کمپلین بھی ہے میلز میں بھی ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد جو ہے کیفیت بہت بھاری بھاری ہو جاتی ہے, سر بھاری ہو جاتا ہے, پیٹ بھاری,
نیند آتی ہے,
نیند آتی ہے, جسم میں تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے.
وجہ بھی بتا دیں جلدی سے.
دیکھیں, اس میں مین جو چیز نظر آتی ہے, ایک تو وہی ہوتا ہے کہ ایک دم آپ فوراً سے جو ایک دم کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں, لوڈ ڈال دیتے ہیں باڈی کے اوپر, یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے. پھر دوسرا جو ہے, آپ ٹھنڈا پانی ایک دم جو ہے بہت زیادہ پی لیتے ہیں, کیونکہ اوور لوڈ کر لیتے ہیں آپ, ایک دم اوور لوڈ کر لیتے ہیں تو اس کا ایک آفٹر افیکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو تمام کے تمام پرابلمس ہوتے ہیں. نیورولوجیکل اس میں کیا ہے, اس میں پرابلمس ہوتی ہیں سلام, اس سے آپ زیادہ روشنی ڈالیں گے.
ہوتا عموماً یہ ہے کہ جیسے کھانا جاتا ہے نا, تو جیسے ریفلیکس کام کر رہے ہوتے ہیں, خون جسم کے اندر بہ رہا ہوتا ہے, تو کھانا جاتے سارا خون کا دباؤ آنتوں کی طرف چلے جاتا ہے. جیسے ہی آنتوں کی طرف جاتا ہے تو بلڈ پریشر فوراً سے, تھوڑی دیر کے لیے تو بظاہر ٹھیک لگتا ہے, لیکن بلڈ پریشر فوراً سے گرنا شروع ہو جاتا ہے
اگر آپ نے زیادہ استعمال کر لیا.
جیسے عموماً عام اس کے اندر لوگ تیزی سے پانی پی رہے, 3-4 گلاس نارمل پی لیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو
بارڈر وغیرہ ہے نا,
جی ایسا 3-4 گلاس ایک ساتھ
پانی کو گلاس پیج سے بھر کر رکھے جاتے ہیں کہ ایسا شروع ہونے کے بعد نہ آگے نا جگ سے گلاس بھرے, ایسا اتنے زیادہ بھرے بالکل سامنے ٹارگیٹ پر ہیں.
ویسے اس کو یوں بھی سمجھے, جن لوگوں کا آپریشن ہوگا نا, ان کا تجربہ ہوگا کہ آپریشن سے پہلے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرائی جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اب جو آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی یا کھلانا پلانا شروع کیا جاتا ہے. اب یہ جیسے فاسٹنگ ہوئی تو فاسٹنگ روزہ کھولا جیسے, تو سب کو بھی فوراً سے 3-4 گلاس پانی چلے جاتا ہے, تو بلڈ سرکولیشن جو سارا آنتوں کی طرف چلا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی لو ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر انسولین اس تیزی سے نہیں نکل رہا ہوتا جس تیزی کے ساتھ آپ کو فوڈ انٹیک ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر بلڈ شوگر بھی گر رہا ہوتا ہے اور سلو ہو جاتی ہے ساری باڈی. تو اس کے سب سے اچھی ترکیب یہی ہوگی کہ آپ 1-2 گلاس پانی لیں, اس کے بعد تھوڑا بریک لیں, اس کے بعد پھر اپنے جو بھی ہلکا پھلکا کھانے پینے کی غذا کی ترکیب کریں.
اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ جیسے کھانے افطار کے اندر عمومی طور پر ٹھنڈا پانی استعمال کیا جاتا ہے گرم علاقوں کے اندر, جب آپ خالی میدے کے اندر ٹھنڈے پانی کو ڈال دیں گے اور 2-3 گلاس ڈال دیں گے
तो ठंडे पानी की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब ठंडा पानी आप मेदे में डालते हैं तो ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, यानी कि आपकी जो रगे होती हैं, जो गैसेस होती है उसको सुकेड़ देता है। इसकी छोटी सी मिसाल ये मैं देता हूँ, जब आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हुए होते हैं जहाँ का एटमोसफियर मौसम हल्का फुल्का गर्म होता है, नदी के किनारे खड़े हुए होते हैं, नदी का पानी ठंडा है, आपने अगर उसमें जंप मार दी तो आपका फौरन रिएक्शन बॉडी का क्या आएगा, आप फौरन ऐसे सुकड़ जाएंगे। तो आप ठंडे पानी में गए आप सुकड़ गए, या एकदम आपने ठंडा पानी अपने ऊपर डाल लिया नहाते वक्त तो आप सुकड़ जाएंगे। तो ये बहुत आसान सी मिसाल है कि अगर ठंडा पानी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो अंदर जो है वैसे कंस्ट्रक्शन पैदा हो जाएगी, जो सुकड़न पैदा हो जाएगी,
मेदे के अंदर
सप्लाईज जो है ना वो स्लो हो जाती है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये बाकी जो इसके ऊपर
बनाए ना, सादा पानी पीने की आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी आपको, शायद ऐसा लगता होगा कि यार ये कैसे होगा। तो अमीर सुन्नत तो माशाल्लाह ठंडा पानी पीने की इनकी शुरू से एक बहुत प्यारी तबीयत है। मैं खुद ठंडे पानी का आदि रहा हूँ और कोल्ड ड्रिंक का आदि रहा हूँ, यानी मैं बता रहा हूँ आप, कोल्ड ड्रिंक का आदि रहा हूँ और जूसेस वगैरह सारी, मतलब के अब ठंडा पानी चलता नहीं, चलता भी नहीं। ये हमारे अब्दुल खलील का बेटे, इनको भी इस बात का अंदाजा है, बालों का मेरी डॉक्टर सलमान से भी यूं मुशावरत रहती है, ठंडा पानी चलता ही नहीं है। और घर में भी पता है कि मिजाज आना भी हो, मतलब मिजाज तब्दील हो जाता है। तो आप अगर आदत बनाएंगे ना तो हो जाएगा, फिर आपको ठंडा पानी जैसा भी आप गर्म पानी नहीं उतरता ना, मतलब गर्म पानी निकल रूम टेम्परेचर जिसको आप एक नॉर्मल वाटर कहते हैं, तो वो सादा पानी हम उसको हम कहते हैं ना, तो वो ना उसमें ना बर्फ होती है ना वो फ्रीज में रखा हुआ होता है। तो ऐसा सादा पानी पीने की आप आदत रखें, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे पानी का जो एक मिजाज है ना वो आपका चलता जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि इसके अब तक मैंने कोई फवायद ही सुने, बेखुसूर रोजे की हालत में फिर बीमारी हो जाए, खांसी शुरू हो जाए, नजला शुरू हो जाए, तकलीफ ही तकलीफ है।
साथ साथ में सब इसमें ये भी होता है कि चिकनाई वाली चीजें पकौड़े समोसे भी ठंडा
ठंडा, तो ये मतलब बिल्कुल अजीब हो गया होता है। ऐसा हम ऐसी आपस में उन लोगों को जमा करते हैं अपने मैदे के अंदर जिनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। अब उनकी आपस की एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर तो मैदा इतना था, अब इतने से मकान के अंदर हमने ऐसे कुछ लोगों को दाखिल कर, ऐसी अशिया दाखिल कर दी कि जिनकी आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अंदर में फिर वो गुत्तम गुत्ता होते होंगे, ना होने का होगा वो अंदर में अपना काम करते होंगे, हम बाहर अपना काम करते होंगे, हम क्या हो गया। तो अब डॉक्टर साहब ने पहले समझा था कि एक वक्त में जमा नहीं करना और इसी तरह जमा नहीं करना, डॉक्टर साहब की मानी नहीं और अब जरा अंदर में हो गए गड़बड़। तो इसलिए बेहतर है कि इन तमाम तर चीजों को आप एहतियाती तौर पर जो हमें समझाया जा रहे लें। अच्छा एक बात में हमदर्द, जैसा इस्लामी बहनों का जिक्र आया तो मेरे ऐसा हमदर्दी कर दें थोड़ी सी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हम लोग बाहर से थके हारे यकीनन घर में आते हैं इफ्तार के वक्त, तो जैसे हम सफर में हो रहे होते हैं घर की तरफ जा रहे होते हैं, ये किचन में खड़ी होती है और बस गर्मी आग पकाना टेंशन कि वो बातों का एक जान या दो जान होती है और तैयारी इसको 6-8-10 जानों की करनी होती है। तो ऐसा क्या करें, मशवरा दे रहा हूँ आपको, इन पकाने वालियों की ना बेचारियों की हौसला अफजाई क्या करें, देर सवेर होने की सूरत में दरगुजर से काम लें, पानी पी के बहुत है, पानी तो उसने तो पकाना नहीं है, पानी माइक्रोवेव से निकालना नहीं है, पानी चूल्हे से उतारना नहीं है, पानी आप अपना खुद ही रख लीजिए। अब तो तैयारी करनी है, उस बेचारी ने अगर अपने लिए करनी होती तो वो तो 5 मिनट फारिग हो जाती है, 2-3 चीजें बना लिया, उससे सारी तैयारी हमारे लिए करनी होती है। तो ये देर सवेर होती है, लोड शेडिंग का सिलसिला भी चलता रहता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो यार इनकी हौसला अफजाए क्या करें, और इनको थोड़ी दुआएं दे दिया करें, अल्लाह को जज़ाए खैर दे, अब इतना इस्तेमाल करती हैं, इनकी हिम्मत बढ़ेगी, कौन सा पैसा मांगती है, उमूमन हमारे हाउस वाइफ होती है, घर की जो औरतें होती है, माँ होती है, बहनें होती है, या बच्चों की अम्मी होती है, हाउस वाइफ उमूमन हमारे यहाँ कहते हैं। तो इस तरह औरतें होती है, घरों की होती है, वो कौन सा उजरत देती है, पैसा लेती है, अखलाक के तौर पर हमारी खिदमत करती है, हम दो बोल मीठे मोहब्बत के प्यार के इनके हौसला अफजाई के बोल देंगे, इनका इनको खुशी होगी। मुसलमान का दिल खुश करना है कि बड़ी फजीलत है, अल्लाह ताला 60 साल की नफल इबादत का सवाब अता फरमाता है, मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना, तो माँ के दिल में खुशी दाखिल होगी, बहन के दिल में खुशी दाखिल होगी, बच्चों के अपनी के दिल में खुशी दाखिल होगी। बेचारी ने इहतमाम किया यार, अब आप पका कर लाए, आप कमा कर लाए, वो कमा कर भी इधर ही रहता, अगर ये पका कर आगे ला दी तो ठीक है ना, तो आपका कमाया हुआ आप खा रहे हैं उसमें उसकी मेहनत है ना, और 8-10 घंटे अगर आपने बाहर गुजारे तो उससे शायद उससे ज्यादा घंटे किचन में मतबख में गुजारे होते हैं, बावर्ची खाने में गुजारे होते हैं, और इसमें हमदर्दी एक दिल में पैदा हुई, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो मेहरबानी करें, ऐसा घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा, और अगर कमी बेशी हो, नरमी गर्मी हो, ठंडा गर्म हो, तो दरगुजर से काम लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। माहौल घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, आपके अंदर का माहौल भी अच्छा रहेगा, मदीना मदीना होता रहेगा, आपस का माहौल भी अच्छा रहेगा, मदीना मदीना।
बोले कॉल है तो कॉल सुना दीजिए।
अस्सलामुअलैकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है। डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, हाई ब्लड प्रेशर, और मैं इंसुलिन वगैरह लेता हूँ, क्या मुझे रोजा रखना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि आपको 2 घंटे के बाद खाना चाहिए।
डॉक्टर साहब, नॉर्मल ऐसे पेशेंट के आप क्या एडवाइस करते हैं?
नॉर्मल ये पेशेंट, इन लोगों को चेक करना होता है कि शुगर इनकी कितनी है, 200 के अंदर है या 300 है, और ब्लड प्रेशर इनकी कितना हाई है, और कौन कौन सी दवाइयाँ ये यूज कर रहे हैं। रिकमेंडेड तो ये होता है कि इनको ये नहीं बोला जाता कि खाना हम 3 घंटे पे खाएं, ये सिर्फ ये बताया जाता है कि अपने मेदे को ज्यादा देर खाली ना रखें, बस हल्का गजा रखें। अक्सर आवाम ये समझती है कि 3 या 4 दफा खाना खाया जाएगा तो खाना कंसिडर किया जाएगा। इनका जो केस है, इसमें इनको ये देखना पड़ेगा कि अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटिक दोनों चीजें जो है इस वक्त कितनी आ रही है, अपने कंसर्न डॉक्टर से मशवरा करके इनकी दवा मॉनिटर हो जाएगी, उसके बाद रोजा रख सकते हैं।
मतलब फर्ज रोजा शरे रहनुमाई लेने के बाद ही इसके बारे में फैसला करना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस अपनी जगह पर फर्जों को बहुत मुफीद होती है, लेकिन क्योंकि फर्ज का मामला है, इबादत का मामला है, तो इसमें शरे रहनुमाई भी जरूर ले लिया कीजिएगा। शरे रहनुमाई के लिए आपको कोई ज्यादा जहमत, डॉक्टर के पास तो वैसे ही जाएंगे आप, हम तो आपको कॉल फोन नंबर दे देते हैं, आप फोन करके पूछ लिया कीजिएगा, कॉल दे लाइए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد عبدالرزاق عطاری کوئٹہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نگرانی شورا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ شوگر پیشنٹ کے لیے اور رمضان شریف کے روزے رکھنے کیسا، کیا اسے رمضان شریف کے روزے اگر اس کا شوگر ہائی لیول پر ہو تو کیا اسے یہ روزے بعد میں رکھ لینے چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ شوگر پیشنٹ کے لیے خوراک کی سحری میں وہ کیا کھائے اور افطاری میں کیا کھائے، یہ بھی اگر بتا دیا جائے تو جزاک اللہ خیر۔ آپ
اچھا ہم تقسیم یہ کر لیتے ہیں کہ سوال میں جہاں شرعی حکم معلوم کیا گیا ہے تو ہم ریفر کرتے ہیں دارالسہر سنت کی طرف، اور جہاں پر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر ایڈوائس لی جا رہی ہے تو ہم ان کو انشاءاللہ ایڈوائس
صحیح۔ اس میں جو عموماً لوگ سب کنسیپٹ ہے شوگر کے مریض روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، ایسا تو نہیں ہے؟
نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی،
روزہ رکھ سکتے ہیں،
بالکل رکھ سکتے ہیں، اپنے مالک سے مشورہ کر کے اگر اس کو تھوڑا سا کوائل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی،
اور انفیکٹ روزہ رکھنے سے شوگر پہ بہت پازیٹو افیکٹ ہوتا ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹک جو ہے اس کا ریورسل ہے۔ انفیکٹ یہ روزہ رکھنے سے جو ڈائبٹک ہوئی بھی ہوتی ہے جو 45 یا 40 سال کی ایج کے بعد ہوتی ہے، عموماً ٹائپ 2 ہوتی ہے، یہ عموماً روزہ رکھیں گے اسٹریٹ اگر 1 ماہ کا تو اس پہ اس کو پازیٹو ریزلٹ ہے، اور 30% پیشنٹ ان کو ریورسل ہوتا ہے، ڈائبٹک ختم ہو جاتی ہے۔
روزہ رکھو، صحت یاب ہو جاؤ گے الحمدللہ۔
ایسے بھی اسی طرح بلڈ پریشر بھی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟
بالکل، اس میں دونوں صورتوں کے اندر ایسے ہی ہے کہ روزہ بالکل ہی نہیں منع کیا جاتا، انٹل انلیس کوئی خدا نہ خاصہ جان کے اوپر بنی ہوئی ہو تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہم بارہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مولد سے مشورہ کر کے اس کو سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے، صحت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس میں جہاں تک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ غذا کے حوالے سے جو ایک ہم جو نارمل غذا، چاہے وہ شوگر کا مریض ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، یا عام آدمی ہو، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں، جیسے اناج ہے، اناج کے اندر آپ جو ہے گیہوں ہے، گرینز ہیں، اور لوبیا ہے، دالیں ہیں، مچھلی ہے، اور فرائیڈ نہیں، مچھلی فرائیڈ نہیں، سالن والی مچھلی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سحری میں اگر آپ اس قسم کی چیزیں لیتے ہیں، یہ دیر سے ہضم ہوتی ہے،
तो आपको भूख जो है ना, आम जो दूसरी चीजें लेती हैं वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे के अंदर हजम हो जाती हैं, तो आपको भूख की एहसास जल्दी महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इस किस्म की चीजें लेंगे जो देर से हजम होती हैं, तो आपको भूख का एहसास उसमें काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये 3, 4, 5 चीजें होती हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
सही,
मुर्गी है, गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिलखसूस जो शोरबे वाला गोश्त है वो ज्यादा फायदेमंद देगा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध है या दूध से बनी हुई अशिया है, दही है,
ये सहरी में
बिल्कुल इस्तेमाल, सहरी में भी कर सकते हैं। सब ये है कि आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चीजें होंगी तो आपका एक भूख की जो कैफियत जल्दी हो जाती है वो आपको बेहतर हो जाएगी।
जौ का दलिया भी इन्हें बहुत मुफीद होगा,
बहुत फायदा होगा।
अगर जौ का दलिया ये एक वक्त इस्तेमाल कर लें
जी,
जौ का दलिया, तो इंशाल्लाह इसमें
दोबारा कर दो, एक ये बहुत बड़ा फायदा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दावत इस्लामी को आप दुआएं दें, दावत इस्लामी ने मेडिकल और हकीम, हिकमत और मेडिकल, इन दोनों को एक साथ बिठा दिया है और बिकेर किसी लड़ाई के बिठाया है। ये तो कौन सा सिलसिला नंबर 47, ये मतलब 47 नंबर ये हमारा सिलसिला है 47वां, मगर अब तक अगर मैं तो देखता हूँ ये थोड़ा सा नाराज नहीं होना, हमारे डॉक्टर अदानी वालों का जो है ना वो लेते रहते हैं रहनुमाई, तो ये चूंकि ये हम रूहानी इलाज भी इधर है तो हिकमत का इलाज भी यहाँ है, आपको घरेलू इलाज भी यहाँ मिल रहा है, तो आपको मेडिकल भी इलाज यहाँ मिल रहा है, तो ऐसा वाकई ये मदनी क्लिनिक है, ये मदनी क्लिनिक, तो इससे अल्लाह ताला बस हम फायदा जो उठा रहे हैं उठाते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमने सिलसिला शुरू किया है, शुरू से हमारी एक नीयत थी वो थी अद्दीन नसीहा, दिन खैर खाई का नाम है। मेडिकल बहुत महंगा है, मुझे इस बात का एहसास है, मेडिकल बहुत महंगा है और बीमारियां बहुत ज्यादा है, इतनी बीमारियां, इतनी बीमारियां और ऐसी ऐसी बीमारियां है कि हमने पहले सुनी नहीं थी, और अब जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं मेडिकल भी महंगा होता जा रहा है। एक नॉर्मल आदमी दे कांट एफोर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, एक आम आदमी मेडिकल के खराजात को बेयर नहीं कर सकता, एफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब जब वो सुनता है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया तो वो सुन के खुद ही बीमार हो जाता होगा कि आप गए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, टेस्ट कराने पड़ेंगे, लेबोरेटरी, ये वो, इन तमाम सब चीजों को हम महसूस करते रहे जमाने से, करे तो क्या करें। अब एक चीज है, हम पेशेंट को देखें, पेशेंट को हम देख सकते हैं, आप जो कॉल करते हैं तो डेफिनेटली हम आपको पर्टिकुलर कॉल करने वाले को एक इलाज, पर्टिकुलर एक खास इलाज सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सर पेशेंट का फिजिकली चेकअप होना ये बहुत जरूरी होता है, वो चाहे आप हिकमत के पास चले जाएं या आप मेडिकल के पास चले जाएं या होम्योपैथी के पास चले जाएं या किसी के पास चले जाएं, फिजिकली चेकअप ये बहुत जरूरी होता है। इसका पूरा एक प्रोटोकॉल है, पूरा प्रोसीजर है चेकअप का, जो मतलब आपके यहाँ भी है इनके यहाँ भी है, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कॉल करते हैं। अब जो जनरल ट्रीटमेंट बनता है वो हम आपके सामने रख देते हैं और आपको आप ही के किसी करीबी कंसल्टेंट से, जो डॉक्टर होते हैं उनकी तरफ हम आपको रिफर करते हैं कि आप उनसे जाकर इलाज करवाने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ दावत इस्लामी की ये बहुत खूबसूरत एफर्ट है, दावत इस्लामी का ये बहुत खूबसूरत तरीका है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत इस्लामी के इस सुन्नत भरे महकमे के मदरी माहौल में हमने मेडिकल फैसिलिटीज रखी हैं इनसाइड द दावत इस्लामी, अंदर दावत इस्लामी है हम, क्योंकि हमारे पास 18,000 से ज्यादा इस्लामी भाई काम करते हैं, इम्प्लॉयज हैं, मोर देन 80,000 इम्प्लॉयज दे आर वर्किंग इन दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दैट मींस देयर इज, ये सिर्फ 18,000 इस्लामी भाई नहीं है, 18,000 इस्लामी बहने नहीं है, दैट मींस more or less 18,000 families इस अंदाज पर दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता बिलोंग करती हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा वेलफेयर है दावत इस्लामी का, इस सेंस के तहत मैं कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत ही एक माइनर सी कुछ कंडीशंस के साथ हम तमाम इन इस्लामी भाई इस्लामी बहने जो हमारे साथ इस तरह ज्वाइंट है, हमने बाकायदा इनका मेडिकल रखा, मेडिकल ऑलमोस्ट फ्री रखा हुआ है, बल्कि इसके पूरे में फॉर्म बनाए हुए हैं और हमने बाकायदा फॉर्म बनाकर हम अपनी ही इस्लामी भाइयों को इस बात को मोटिवेट, मैं अभी भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर अब तक अगर आपने उन फॉर्मों को नहीं भरा तो आप अपने शोभा जात के जिम्मेदार के जरिए वो फॉर्म फिल करें और आप मेडिकली फैसिलिटीज लेने की तरफ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुखैर इस्लामी भाई मेडिकल के लिए हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, एक नॉर्मली सपोर्ट करते हैं कि यार हम इलाज करवाने होते, शौक होता है कि यार हम मरीजों का इलाज कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस तरह हमारे पास हजारों फैमिलीज हैं। अच्छा बाज हुआ जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो इनके फैमिली का जो ट्रीटमेंट है इलाज वो हम कराते हैं। गैर शादीशुदा है तो इनके पेरेंट्स का माँ बाप का जो इलाज है हम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं। या हमारे डॉक्टर, तो हमारा पूरा एक पैनल बना हुआ है डॉक्टर का, हॉस्पिटल किससे भी हमारी तरकीबें बनी हुई हैं। और जो मुखैर इस्लामी बात है, जो मतलब कि एक साउंड आशिकाने रसूल है जिनको अल्लाह ताला नवाज अहले सरवत जो होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं कि आप मेडिकल के तौर पर हमसे लीजिए। तो दोनों आप मेडिकली तौर पर देना भी चाहते हैं या यूं भी करना चाहते हैं तो भी आपको दावत है। और जो दावत इस्लामी वाले इस तरह हमारे अंदर काम करते हैं, अगर वो अब तक इस सहूलत से अभी तक इन्होंने फायदा नहीं उठाया तो वो भी उठाएं। तो ये इसके पीछे जो लॉजिक है ना, मैंने अमीरे सुन्नत से उस वक्त मशवरा हमारा हुआ था, इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये कि अमीरे सुन्नत खुद फरमा देते कि यार इलाज महंगा होगा, यार बेचारा गरीब इलाज कैसे कराएगा, अपने को ये करना चाहिए। अगर इतनी ज्यादा सैलरीज हमारे वैसे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा सैलरीज नहीं है, तनख्वाहें इतनी ज्यादा नहीं है, तनख्वाहें बड़ा बड़ा कर भी ज़कात और फितरा और जो हम जो मदनी अत्याद लेते हैं तो पूरी तहरीक भी चलानी होती है और मेडिकल के खराजात भी होते हैं। तो अब जिनकी हम सैलरीज देते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो वो भी एक इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं होती, ना इतनी ज्यादा कम भी नहीं होती, लेकिन महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, गुर्बत ज्यादा है। गरीबों के साथ हमदर्दी वाकई होनी चाहिए और फैमिलीज होती हैं बेचारे इलाज नहीं करवा सकते। तो यूं अमीले सुन्नत ने बड़ा खूबसूरत हमें जहन दिया था कि यार अपने को इनका इलाज करवाना चाहिए। तो यूं हमारा ये शोभा कायम हुआ, इलाज मजलिस बनाई गई और फिर एक कुछ तहरीक है, तंजीम है, तो कुछ हल्की फुल्की शर्तें भी रखी गई कि इसी तरह आपको थोड़ा करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो जाती है। उस तरह कमोबेश करके मजलिस फिर इसका मेडिकल करवाती है।
रमजान में भी पूरा एक माह का एहतिकाफ होता
है, क्या बात याद दिलाया, बहुत जबरदस्त बात।
उसमें कमोबेश हम लोग रोजाना 1000 पेशेंट देखते हैं कमोबेश।
लास्ट ईयर जो हमारा रमजान में रहा तकरीबन हमने 54,000
पेशेंट देखे
पूरे साल में, 54,000 पेशेंट हमने
पूरे साल में जो पेशेंट देखे आपने
54,000
54,000 पेशेंट की हमारे पास एवरेज 54,000 पेशेंट। आप सोचिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेडिकल का जो तिब्बी इलाज का जो शोभा है उससे पेशेंट देखे हैं
जी। और रमजान
रूहानी इलाज तो लाखों की तादाद में ना, लाखों की तादाद में रूहानी इलाज है
इसमें जो हम रमजान होते हैं। तो लास्ट ईयर तकरीबन हमने तकरीबन 15,013 मरीज जो है ना रमजान में, सिर्फ
15,013 पेशेंट लास्ट रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मायनो करके एक सहूलत इन्होंने दी वो देखा। अभी आते बेचारे तो वो कई बीमार हो जाते हैं मगर फैजान मदीना में मेडिकल
जो मुलाकात करने भी आते थे ना मोतकीफ वगैरह से तो वो भी इलाज करा के जाते हैं शिफाखाने में।
नहीं उनको उसमें ये होता है कि हम उनको सिर्फ एडवाइस करते
हैं सही। ओनली मोतकीफी कमोबेश तो रोजाना 15,000 तक हम लोग ने ट्रीटमेंट
किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरे माह रमजान के तकाफ की सूरत है फैजान मदीना में, अमीर सुन्नत भी यही होते हैं और इस बार भी शायद हो सकता है कि 5-6 हजार तो पूरे माह के मोतकीफ हो जाए और फिर बढ़ते बढ़ते आखिरी में मोर देन 7-8,000 आई थिंक ये तादाद पहुंच सकती है। अल्लाह करीम दावत इस्लामी
डॉक्टर जीरा की
कॉल है।
डॉक्टर जीरा कत्तारी यूके के शहर लेस्टर से अर्ज गुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इस वक्त मदनी क्लिनिक का सिलसिला देखने की सआदत मिल रही है और माशाल्लाह अज़्ज़वजल रमजान मुबारक के हवाले से बड़े प्यारे प्यारे तिब्बी मदनी फूल जो है हमारे डॉक्टर सलमान और डॉक्टर कमरान दे रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल इनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। यूके के हवाले से सवाल हुआ था तो यकीनन यहाँ पे तकरीबन कमोबेश 19-20 घंटे का रोजा होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़वजल ने इंसान के जिस्म को ऐसी ताकत अता फरमाई है कि तिब्बी नुक्ता नजर से वाकई ये बहुत हैरान कुन बात है कि कम बेश 20 घंटे तक इंसान का जिस्म जो है वो बगैर खाए पिए जो है वो कैसे इसका गुजारा होता है, हालांकि रमजान मुबारक से पहले जो खाने की तरकीब होती है। तो बहसियत डॉक्टर जब देखा जाए तो वाकई अकल जो है वो दंग रह जाती है। जहां तक यूके के हालात के हवाले से ताल्लुक है तो यकीनन यहाँ पे ना तो इतनी गर्मी होती है और इसकी वजह से पसीना भी नहीं इतना निकलता, जिसकी वजह से जो है वो पानी की कमी जिस्म में नहीं होती, प्यास का भी एहसास इतना नहीं होता। अमूमन लोगों को भूख का एहसास होता है। औसतन जो यहाँ पे इफ्तार का टाइम होता है तकरीबन 9:30 बजे होता है और सहरी का जो वक्त है कम बेश 1 बजे के करीब जो है वो खत्म हो जाता है। तो यूके के नाजरीन के लिए अर्ज ये है कि इफ्तार के वक्त जो है ये बिल्कुल हल्का फुल्का जो है वो खाना खाएं, जैसे फ्रूट चाट वगैरह हो गई, दीगर फल फ्रूट हो गए, और हर 10-15 मिनट के बाद कुछ ना कुछ जो है वो पानी पीते रहें, और फिर जब तरावी के लिए जाएं तो अपने साथ जो है वो पानी की एक छोटी बोतल ले जाएं और हर 2-4 रकअत के बाद जो है वो कुछ ना कुछ पानी पीते रहें। यूं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी इनके जिस्म को मिलता रहेगा। और सहरी के वक्त कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं वो तनावल किए जाएं, जैसे खजूर हो गई, इसी तरह गंदम के आटे से जो भी चीजें बनी होती हैं, रोटी जो है ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के हवाले से फायदेमंद रहती है। और आप ये हरगिज ना सोचें कि भाई इतना लंबा रोजा होगा। अगर मैं आपको मशवरा दूं कि जो आपकी नॉर्मल खाने की रूटीन होती है उसी के हिसाब से रखें तो इससे जो है इंशाल्लाह यकीनन हमें तिब्बी तौर पर और रूहानी तौर पर दोनों तौर से हमें फायदा होगा। और बिलखसूस बिलखसूस कोशिश करें कि तली हुई चीजों से हरगिज हरगिज जो है वो बचा जाए, हर सूरत में बचा जाए, क्योंकि तली हुई चीजें खाने से जो है वो मैदे पर ये भारी होती है, इससे आपको डकारे वगैरह भी आएंगी और तली हुई चीजें खाने से जो है वो आपको मैदे में जलन और तेजाबियत की शिकायत जो है वो बढ़ने का खतरा है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीरक, आपने हमें कॉल भी की और स्पेशली यूके में जो आशिकाने रसूल हैं इनके लिए बड़े मुफीद आपने मदनी पुल अता किए और मेडिकली तौर पर भी बहुत प्यारे प्यारे आपने मशवरे दिए। अल्लाह करीम हम सबको माह रमजान की आमद की तैयारी जोक शोक के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिनकी कॉल्स नहीं ले सके उनसे माजरा चाहते हैं और सिलसिले का वक्त अब हम पूरा होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
रसूल पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गम जदों आफत नसीब।